नमस्ते दर्शक मित्रों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी ईगो पर चर्चा की थी कि किस तरह से ईगो पनपता है, उसकी वजह से वहम निर्माण होता है और अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम रहम की भावना नहीं रख सकते, ये भी हमने देखा। साथ साथ हमने ये भी बात जानी कि कैसे हम दूसरों को माफ अगर करते हैं तो अंदर से जैसे वो चीज निकल जाती है, तो आज इसी पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर सचिन हमारे साथ में हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, ओम शांति।
ओम शांति।
माफ करना इतना मुश्किल क्यों जाता है? बहुत कॉमन चीज है, सब जानते हैं माफ करना चाहिए, होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, उसके बावजूद भी हम माफी नहीं दे सकते।
अगर कोई व्यक्ति माफ नहीं करता है या नहीं कर पाता है तो वो भी एक प्रकार का अहंकार है। वो इसलिए नहीं छोड़ पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदर एक हर्ट फीलिंग है कि वो हर्ट फीलिंग जो है ना, वो हर्ट फीलिंग क्या कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरे को दुखी किया है, इसको जब तक उसकी सजा नहीं मिलेगी तब तक मैं माफ नहीं कर सकता। अभी ये जो भाव है इसको हम कहते हैं बदला लेने का भाव जो है। चलो हमने मान लिया 100% सामने वाले की गलती है, उसने ऐसा कहा या किया जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप इस बात को भी सोचो कि उसने जो किया, जो आप कहते हैं गलत किया, ओके एग्री, लेकिन उसके बाद जो आप कर रहे हैं, आपने उस बात को पकड़ के रखा और आप कितना दिनों से उसको पकड़ के रख रहे हैं, परेशान कौन हो रहा है?
ऑफ कोर्स जो पकड़ने वाला है वो परेशान होता है, लेकिन हाँ। उसको अगर बार बार वो माफी देता है तो सामने वाला फिर से वो गलतियां करता है, ये बिलीफ है, बहुत डीप बिलीफ है। कोई भी इंसान स्वयं का इंसल्ट नहीं चाहता।
मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर से आप सोचो इसके ऊपर, क्या कोई किसी का इंसल्ट कर सकता है? मैं फिजिकल अब्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ
जी।
जब तक आपको कोई शारीरिक रूप से हानि नहीं पहुंचाता, जब आपको खुद को बचाना चाहिए। मेंटल अब्यूज, ठीक है ना, दो बातें हैं जो पिछले बार भी हमने देखी कि कोई देहधारी या शरीरधारी आपको निगेटिव थॉट्स देता है, निगेटिव कमेंट्स पास करता है, और परमात्मा जो आपको आपकी विशेषताओं का वर्णन करता है, आपके सामने हमेशा ये दो चॉइस रहेगी कि अपने बारे में निगेटिव कमेंट्स एक्सेप्ट करना या पॉजिटिव कमेंट्स एक्सेप्ट करना।
जी।
जो हेल्दी बिहेवियर है वो जब कोई निगेटिव कमेंट पास करता है या क्रिटिसाइज टीका करता है तो उसमें सच्चाई देखता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, वास्तविकता है या बड़ा चढ़ा के कही जा रही है।
जी।
तो अगर उसमें कोई सच्चाई है तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए अपनी गलती को और अपने को करेक्ट करना चाहिए। दूसरी सिचुएशन आती है जब मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है ना, फिर भी कोई मेरे बारे में ऐसे फैला रहा है या कह रहा है, उस समय उसको एक्सेप्ट करने के बजाय मैं उसके प्रति रहम सोचूं कि मैं ऐसा नहीं हूं। पिछले बार हमने देखा ना, इफ यू आर राइट नो नीड टू गेट एंग्री।
यस, आपको सिद्ध तो करने की भी जरूरत
हाँ,
नहीं।
और जब हम उसको माफ नहीं कर रहे ना, गलती उसकी है, सजा हम अपने आप को दे रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। माफ न करना एक प्रकार की सजा है। क्यों? क्योंकि आप कल्पना करो, एक घर में रह रहे पड़ोसी है, एक ऑफिस में काम कर रहे, दो लोगों का आपस में कुछ हो जाता है, गलती हो जाती किसी से, और दूसरा माफ नहीं कर रहा है। अभी जितने साल तक, जितने दिनों तक वो माफ नहीं कर रहा है, सजा कौन भुगत रहा है? जो माफ नहीं कर रहा है वो सजा भुगत रहा है
जी।
हो सकता है सामने वालों को भी फील हो रहा है कि उससे गलती हो गई।
जी एग्जैक्टली, मैं यही मुझे पूछना था।
कहा कि हाथ और पैर से हिंसा करने के बजाय मौखिक रूप से की गई हिंसा जिसके उच्चारण के पश्चात आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता है, उसको गाली कहते हैं। वो कहते हैं जब तक मैं उसको सूद समेत रिटर्न नहीं करूं तब तक यह ठंडक नहीं पड़ती है। मर्डर करना, हाथ पैर तोड़ देना, किसी का सबके सामने अपमान करना, बदला लेने की भावना, घर घर में जाके किसी के बारे में सुनाना, ये सब जो है ना वो यहाँ पर ठंडक पड़ती है उनको, अब ये जो वृत्ति है, एक वृत्ति है जो मनुष्य के अंदर रहती है, ये वृत्ति बदला लेने की वृत्ति है और कर्मों की गति के अनुसार आप सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं।
ओके
फिर से हम रिकैप करते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन में ये घटना होती है छोटे बड़े रूप में। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए, किसी ने आपका अपमान किया, किसी से गलती हुई जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, अभी उसने गलती की और आपको गुस्सा आ गया कि इसने ऐसा कैसे कहा जबकि मैं ऐसा नहीं हूं। आप अभी बदला लेने के मूड में हैं, तो पहली गलती उसने की, कर्मों की गति से हो सकता है कि वो आपकी गलती का रिटर्न कर रहा है। अभी आपके द्वारा निगेटिव वाइब्रेशन इधर एट द लेवल ऑफ थॉट, विचारों के रूप में, बोल के रूप में, हो सकता है कर्मों के रूप में जा रहा है, आप निगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं। आउटपुट क्या है इसमें से,
फिर से वही आ रहा है।
आपको अभी डिसाइड करना है, हमारे दर्शकों को डिसाइड करना है, क्या अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं, और माफ करना एक पॉजिटिव एनर्जी है, क्षमा करना एक पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्षमा करने वाला पावरफुल होता है और जो क्षमा नहीं करता है वो बहुत कमजोर इंसान है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी भेजने के बजाय एक नाराजगी की एनर्जी है, आप नाराज है, या आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके अंदर थोड़ा और हायर निगेटिव एनर्जी, आप बदला लेने के मूड में है, माना आपके द्वारा निगेटिव एनर्जी जा रहे है, अभी आप बताओ ये कब तक चलता रहेगा और आपका जिंदगी उसमें जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो जो समय आप किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, जिस एनर्जी को आप विधायक कार्य में विश्व कल्याण के लिए लगा सकते हैं, वो एनर्जी आपकी इसमें जा रही है। और एक सवाल और अपने आप को पूछो कि आखिर ये कब तक आप इस तरह से सफर करना चाहते हो। मेरे ख्याल से जब अपने आप से ये दो तीन सवाल पूछते हैं ना, अपने आप आपको अंदर से जवाब आ जाएगा कि चलो उससे गलती हो गई, मेरे से भी हो सकता है कोई गलती हुई है जो मुझे नहीं पता, उससे गलती हो गई और मैं अभी उसको वापस निगेटिव एनर्जी एट द लेवल ऑफ थॉट, विचारों से भेज रहा हूं, या बोल से मैं भेज रहा हूं, या असहयोग से भेज रहा हूं, ये भी एक निगेटिव ऊर्जा है। मुझे डिसाइड करना है कि इसको कब तक मैं कंटिन्यू करूं और इसका आउटपुट क्या है अल्टीमेटली। वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, हो सकता है हमारे साथ वाले सभी परेशान है,
तो वो एक कर्मों का बोझ हमारे ऊपर
बहुत बोझ चढ़ता जाता है और डे बाय डे और भारी होता जाएगा। विद पासिंग डे बाय डे तो छोड़ो, विद पासिंग एवरी मोमेंट इसका बोझा बढ़ते जाता है। और अगर उनके पास पॉजिटिव एनर्जी दोनों में से किसी ने भी जनरेट नहीं की, एंड इज वेरी डेंजरस। फिर से मैं कह रहा हूं, शायद पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, लेकिन व्यक्ति का बदला लेने का जो भाव है
बहुत एक्सट्रीम रहता है,
वो एक्सट्रीम हो सकता है। मेरे पास एक डॉक्टर की केस, उसने कहा कि उस व्यक्ति को मैंने तो खत्म करने का सोच लिया, प्लान भी कर दिया उसका मर्डर करने का कैसा, और उसमें से निकलने कैसा वो भी सोच लिया, योग से और ज्ञान से उसके अंदर ये परिवर्तन आया। उसको भी उसने कहा 3 से 6 महीना लगा, पर अभी भी कहता है बीच में अचानक वो विचार आ जाता है, तो अभी मैं उसको शांत कर देता हूँ।
एक व्यक्ति ने अपनी गलती मान ली तो क्या उसका वो खाता फिर नहीं बनता?
नहीं, हाँ, वो अपने खाते को एंड कर रहा है उस समय, दैट इज समझदारी। वही मैं कह रहा हूँ, एक ही सवाल अपने आप से पूछो कि जो लोग व्यक्ति माफ नहीं कर रहा है वो सुख चाहता है दुख चाहता है? मेजोरिटी लोग, मेरा अनुभव अभी, दुख चाहते हैं। माना ये निगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल है, जिसके बारे में सुनाते हैं ना कहानियों में, कि एक व्यक्ति ने भगवान से तपस्या करके मांगा कि परमात्मा ने कहा कि तुमने इतनी साधना की, बोल तुम्हें क्या चाहिए, पर परमात्मा को उसकी बीमारी पता थी, तो उसने कहा तू जितना मांगेगा तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। उसको बहुत ईर्ष्या थी अपने पड़ोसी के ऊपर, तो उसने कहा मैं एक घर मांगूंगा उसको 2 मिलेगी, मेरे को एक कार मांगी तो उसको 2 कार मिलेगी। तो आखिर में उसने बहुत सोचने के बाद देखो परमात्मा से जो कह रहा था कि तुझे जो चाहिए मांग ले, उसने क्या मांगा होगा कि हे परमात्मा तुम मेरी एक आंख फोड़ दो।
ओहो,
क्योंकि उससे क्या हो जाएगा,
उसकी दोनों आंखें चली जाएंगी।
माना दूसरे का नुकसान करने के लिए मैं अपना नुकसान करने को तैयार हूँ, ये वृत्ति है बदला लेने वालों की। ये बीमारी है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बार बार अपने आप को इसलिए क्षमा करना क्यों डिफिकल्ट है कि अंदर जो अहंकार को ठेस पहुंची है, वो ठेस से निकलना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों को, होती है अहंकार को ठोस। एक्चुअली सेल्फ एस्टीम को कभी ठेस नहीं पहुंचती है, स्वमान को कोई परेशान नहीं कर सकता है। जो भी ठेस पहुंचती है ईगो को हॉल्ट होता है। और हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट किसी के कहने से कम या ज्यादा नहीं होता है। ये हमने सिस्टम एक बना लिया कि कोई अच्छा है तो उसकी बहुत महिमा करते हैं, तो उसको भी लगता है कि वो कोई तो बड़ा है। फिर जो अपने आप को इतना बड़ा समझता है उसको फिर एक किसी ने पिन मार दिया, उसको पूरा हवा निकल जाती है। तो हमारी अवस्था का आधार किसी के महिमा के ऊपर नहीं हो। कोई हमारी महिमा करता है हमको अच्छा लगता है, फिर कोई अपमान करेगा तो बुरा लगेगा। यहाँ पे हमको आध्यात्मिकता या परमात्मा ने कहा कि बच्चे तुम दोनों अवस्था में समान रहो, क्योंकि जिस क्षण, अभी हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, सॉल्यूशन ये है कि जिस क्षण आपकी कोई महिमा करता है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करो। आप महिमा एक्सेप्ट किया तो आपको अपमान भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको आप अगर कोई आपकी यथार्थ वास्तविक महिमा करता है तो उसको परमात्मा प्रसाद करके सौंप दो उसको, कि कमाल उसका है। मुझे यहाँ पर भी हमारी दादियों की बात याद आती है, जब दादियों को हमने देखा और दादी की विशेषताओं को वर्णन किया तो दादी ने बहुत अच्छा कहा, हमारी प्रकाशमणि दादी जो मुख्य प्रशासिका थे, तो उन्होंने कहा कि हमेशा मैं ये ध्यान में रखती हूँ कि दो लोग होते हैं, एक बनने वाला और एक बनाने वाला। तो हम भले बनने वाले हैं पर बनने वाले से महान होता है, और बनाने वाला वो परमात्मा है। तो जब आपकी कोई महिमा करे ना तो उसको परमात्मा प्रसाद करके उसको सौंप दो कि ये सब किया कराया उसका है।
इससे हमारा अहंकार खत्म
होता है, इससे हमारा अहंकार खत्म होता है। और जितने भी योगी होके गए वो स्वयं को तृतीय पक्ष में बोलते थे, माना अगर डॉक्टर सचिन है तो ऐसे कहेंगे डॉक्टर सचिन को ऐसे लगता है। इससे क्या हुआ कि वो अहम से थोड़ा दूर रहते हैं। बोलते वक्त हम ऐसे बोल सकते हैं कि परमात्मा शिव बाबा ने डॉक्टर सचिन के द्वारा सेवा की, लेकिन अंदर मेरे को अच्छा लग रहा है। ये सूक्ष्म में है ना, ये भी अहंकार है। परमात्मा ने ये भी कहा कि बच्चे आपने जो त्याग किया उस त्याग का भी त्याग करो, नहीं तो क्या होता है त्याग का भी अहंकार आ जाता है कि हमने ये छोड़ा ये छोड़ा ये करते हैं। उसका भी सूक्ष्म में अहंकार नहीं आना चाहिए। और उसका फिर से एक इंडिकेटर मार्क जो हम सब ध्यान में रखें कि आपको अंदर से कभी भी अगर अपमान की फीलिंग आती है तो समझने का अभिमान है।
बराबर,
जहां अभिमान है वहीं पे अपमान की फीलिंग आएगी।
जैसे आपने कहा कि दो व्यक्ति में से अगर एक माफ कर देता है तो उसका थोड़ा काउंट कम होता है कर्मों का, लेकिन क्या सामने वाला व्यक्ति भी उससे बदल सकता है, यानी कंप्लीटली सॉल्यूशन मिल सकता है?
यस, परसेंटेज में पॉसिबल है। आप विजुअलाइज करो कि दो व्यक्ति हैं, दोनों एक दूसरे को निगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं।
अच्छा,
आप समझ रहे हैं? लेकिन एक ने निगेटिव एनर्जी फेंकना कम कर दिया, अभी ये फेंक रहा है वही उसके पास आ रहा है, और धीरे धीरे इसको रियलाइज हो रहा है कि मैं अकेला ही फेंक रहा हूं, उधर से कुछ नहीं आ रहा है। और फिर उसके अंदर हो सकता है रियलाइजेशन आ जाए कि नहीं, मेरी गलती है, वो व्यक्ति ने बदला है अपने आप को, तो मेरे को भी बदलना चाहिए। मैंने उसका बहुत अपमान किया, मैंने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। अगर मैं अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस में इस बात को रखता हूँ तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एक अच्छाई रहती है। वो अच्छाई मेरे को बताती नहीं, तुमको भी बदलना चाहिए।
मतलब वो एनर्जी मिलने की वजह से
yes.
धीरे धीरे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। yes. शायद वो टाइम बड़ा yes. हो सकता है या
और इसको स्पीड करने का और एक तरीका जो राजयोग में हमको सिखाया गया है, अगर आपको लगता है कि फलाना फलाना या फलानी आपके पीछे पड़े हैं, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, एक पहली बात तो आप निगेटिव एनर्जी फेंकना बंद करो आपके तरफ से। और दूसरा आप अगर कर सको कि वो व्यक्ति की अगर निगेटिव एनर्जी आ रही है तो वो व्यक्ति इस समय अपने सकारात्मक ऊर्जा को जागृत नहीं कर पा रहा है, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप परमात्मा से लेके उसको सकारात्मक ऊर्जा दो। तो जितनी आपकी सकारात्मक एनर्जी उसके पास जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, हो सकता है कि उसकी निगेटिव एनर्जी कम हो जाए। और हम ये प्रयोग करते हैं सूक्ष्म में, जिन लोगों के साथ में हमारा अच्छी तरह से बनता नहीं है या हमको लगता है कि इन लोगों से हमको निगेटिव ऊर्जा आ रही है, उनको रोज हम परमात्मा के सामने इमर्ज करते हैं और परमात्मा को कहते हैं कि हे परमात्मा, ये सब आपके बच्चे हैं, ये आदि अनादि पवित्र आत्मा है, वर्तमान समय हलचल में है, आप इनको शक्ति देना, आप इनको सद्बुद्धि देना, इनका भी कल्याण हो। वैसे ये आत्मा बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। ऐसे अगर आपके दिल से वो वाइब्रेशन जाए तो हो सकता है कि वो आत्मा बदल जाए। ऐसे हमारे पास अनुभव है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम माफ करते हैं टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए होता है हमारे अंदर से, सबके अंदर से रहम की भावना आती है, फिर से वो एक नेगेटिव विचार उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रोसेस है, तो इसमें हम कैसे अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखें, क्योंकि बीच बीच में ये सब चीजें उत्पन्न होती है, फिर से वो चीज याद आती है, जो बोला वो याद आता है, वो नेगेटिव बात याद आती है। तो ये जर्नी में हमको राजयोग और कैसे हेल्प कर सकता है?
अगर बीच बीच में वो याद आती है तो बीमारी पूरी तरह से गई नहीं है।
नहीं, ठीक है, ये मालूम है
ना, ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। दूसरी बात, माफ करना मैंने माफ किया फिर भी मुझे याद आता है तो समझने का मैंने माफ नहीं किया। अगर मैंने उसको सच्चे दिल से माफ किया है तो उस आत्मा के प्रति मेरे अंदर से निगेटिव ऊर्जा नहीं निकलनी चाहिए। व्यक्ति ने कहा, सर माफ करना मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं तुरंत माफ करती हूँ, सिर्फ मैं भूलती नहीं। माफ किया इसका प्रूफ है कि आपके द्वारा उस व्यक्ति के लिए अनकंडीशनल पॉजिटिव एनर्जी जानी चाहिए। रोज अभ्यास करना पड़ेगा तभी ये दिल की गहराई से आएगा। रोज अभ्यास करेंगे, और अभ्यास भी कैसे, उसकी भी विधि है। पहले आपको अपने आप को स्वीकार और माफ करना चाहिए। दूसरे को माफ करने की बाद में आती है। जो लोग दूसरे को माफ नहीं करते ना, उसका मतलब वे खुद को भी माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत सूक्ष्म चीज है कि जब मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ अपनी गलतियों के साथ, तभी मैं दूसरों को स्वीकार कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए कठिन है। मुझे परमात्मा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हमको जो है जैसा है स्वीकार करता है। तो मुझे भी अगर परमात्मा के जैसा बनना है तो जैसे परमात्मा ने मुझे स्वीकार किया वैसे मुझे भी औरों को स्वीकार करना चाहिए। अगर जब मैं ये स्वीकार करना चालू करता हूँ ना, तो फिर होती है, माँ अपने बच्चे की गलती को संभाल लेती है ना, सिर्फ इतना ध्यान रखते कि उससे गलती ना हो अगली बार, इतना अटेंशन तो रखते हैं। जब तक आपको कोई फिजिकली हार्म नहीं करे तब तक आपको प्रोटेक्ट करना है, बाकी मेंटली या वर्बली जो अब्यूज करते हैं उससे हमारा नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सत्य चीज है, आज नहीं तो कल लोगों के सामने आ ही जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ रहता नहीं है, मतलब हम अनायास बोल के निकल जाते हैं कुछ सामने वाले को, या हमारा इंटेंशन नहीं होता है, जो ऐसा कर्म हो जाता है जो सामने वाला उससे बहुत हर्ट होता है, और बिल्कुल अभी तक बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था और अचानक से विड्रॉल आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय पे सबसे अच्छा क्या हम कर सकते हैं कि ताकि फिर से वो रिलेशन,
बात करना चाहिए। बात करके मेजोरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैंने देखा कि रिलेशनशिप में बात कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। एक बार बात बंद हो गई ना, फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती, क्यों नाराज है, क्या कारण है। जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे व्यक्ति रहता है जो बात नहीं करता है तो बाकी वाले बहुत परेशान रहते हैं उस व्यक्ति से। तो आपको पहल लेके, अगर आपको लगता है अल्टीमेटली ना, आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए जरूरी है। अगर मेरे लिए रिलेशनशिप जरूरी है तो आपको पहल करके उनसे पूछना चाहिए कि भैया क्या हुआ, व्हाट इज द इश्यू, मेरे से कोई गलती होगी तो आप बताओ ना, मेरे को पता तो चले। जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुमको समझ में आना चाहिए तुमने क्या किया। चलो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, जाने अनजाने में, तुम मुझे माफ कर दो, हमारा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही सवाल अपने आप को पूछो, जब मेरे पास ऐसे केस आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप रिलेशनशिप तोड़ने पे अभी डिसाइड कर लिया कि आप ये रिलेशनशिप नहीं आगे लेके जाना चाहते, एक ही सवाल पूछो कि इतने साल तक आपने इसको क्यों बनाए रखा
जी,
है ना, इतने साल तक बनाए रखा और वन इन्फॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में आप जा रहे हो। अभी जिंदगी एक किताब है, किताब में एक पेज मिस्टेक का हो सकता है, वो एक मिस्टेक का बुक के लिए पूरा बुक को हम खत्म नहीं करते हैं ना, वो मिस्टेक वाले पेज को फाड़ देना चाहिए।
तो हम उसको अगर जितना जल्दी हो सके करते हैं,
जल्दी से जल्दी करना चाहिए, इसको पेंडिंग नहीं है, क्योंकि जितना ये पेंडिंग होता जाएगा ना तो सबके चक्र चलने लगते हैं और हरेक अपनी बुद्धि के समझ के आधार पर नए नए क्रिएट करता जाता है, नहीं ऐसा हुआ रहेगा, अच्छा ऐसा हुआ।
कई लोग बोलते हैं इस बात में कि जरूरत नहीं है जल्दी पहल करने की, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ہر چیز بتانے کی کیا ضرورت ہے, تھوڑا پیشنس رکھو. پیشنس یہ ورڈ بہت سندر لگتا ہے, پر کیا اس میں ضروری ہے پیشنس رکھنا؟
اگر آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹ نہیں رہا ہے, میجر ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے آپ کے ریلیشن شپ میں, آپ کا بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے, یو ہیو ٹو کیپ پیشنس. ٹھیک ہے نا, پر اگر دکھائی دے رہا ہے نقصان ہو رہا ہے, ریلیشن شپ ٹوٹ رہا ہے, بڑا ڈیمیج ہو رہا ہے, یو ہیو ٹو ایکٹ. اگر نہیں ہو رہا آپس میں تو تھرڈ ویکتی کو لے کے اس میں ریزالو کرنا چاہیے, تیسرے ویکتی کو لے کے اس سچویشن کو ریزالو کرنا چاہیے.
آج کی آپ کی پوری بات چیت کے لیے آپ کا پھر سے بہت بہت دھنیواد. ہم پھر سے میڈیٹیشن اس میں لینا چاہیں گے کہ آپ ہم کو اتنا سندر میڈیٹیشن کروا رہے ہیں, تو صرف اس پر ہم فوکس کریں میڈیٹیشن میں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو آپ ہم کو وچار کچھ دیجیے.
سبھی الرٹ ہو کے بیٹھیں گے, سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک سمپورن شریر بالکل ہلکا, دھیان اپنا دو آنکھوں کے بیچ لے کے جائیں گے اور دیکھیں گے ایک سندر دیویہ پرکاش دو آنکھوں کے بیچ چمک رہا ہے, اور میں یہ دیویہ پرکاش اس شریر سے بالکل بھن ہوں, شریر بھاری ہے پر میں بالکل ہلکا ہوں, شانت سوروپ ہوں, ایشوریہ سنتان ہوں, پرماتما کا دیویہ پرکاش میرے اندر پرویش کر رہا ہے اور اس شانتی کے ساگر پرماتما کا پرکاش مجھے شانتی کی شکتی پردان کر رہا ہے, میں شانت ہوتے جا رہا ہوں, اپنے اندر جا رہا ہوں, سوئم کو دیکھ رہا ہوں, بچپن سے لے کے اب تک میرے جیون میں کتنی ساری گھٹنائیں گھٹی ہے, کتنے سارے لوگ آئے ہیں, الگ الگ سوبھاؤ سنسکار کے لوگ, اور ان میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ میری ناراضگی ہے, من مٹاؤ ہے, میں اپنے آپ کو ساکشی ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ جانے انجانے میں بہت لوگوں سے بہت ساری غلطیاں ہوئی اور میں بھی اس میں ہوں, میرے دوارا کتنے لوگوں کو جانے انجانے میں من وچن کرم سے دکھ پہنچا ہوا ہے, اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ان سب سے کھما مانگنی چاہیے, میں ان سبھی لوگوں سے سچے دل سے پرماتما کو ساکشی رکھ کر کھما مانگتا ہوں کہ ہے آتماؤں مجھے کھما کرنا, آپ لوگوں سے بھی جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہے اس کے لیے میں بھی آپ لوگوں کو سچے دل سے کھما کرتا ہوں, کھما کرتا ہوں, کھما کرتا ہوں. مجھے اس کا سمپورن گیان ہے کہ جب تک آتما میں سرو شکتیاں نہیں آتی تب تک من وچن کرم سے اس سے غلطیاں ہوتی رہے گی, اور مجھے ان سب باتوں کو اپنے چت میں رکھنا آوشک نہیں ہے, اس سے بوجھ بڑھتا ہے, نئے اکاؤنٹس یا کرموں کا کھاتا بنتا ہے, چاہے کوئی کتنی بھی نگیٹو ارجا میری طرف بھیج گئے میں ہمیشہ پرماتما کی طرح سب لوگوں کو کھما سہج کر سکتا ہوں, کیونکہ میں سوئم کو کھما کرتا ہوں, سوئم کو سویکار کرتا ہوں, اس لیے دوسروں کو بھی کھما کرنا میرے لیے سہج سمبھو ہے. یہ ابھیاس میں روز کرتا رہوں گا, کسی کے پرتی بھی میرے من کے اندر نکاراتمک بھاو اگر پنپتا بھی ہے تو میں اسے ترنت چھوڑ دوں گا, مجھے اب اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے سب کو سچے دل سے کھما کر دیا, میرا دھیان سوئم کے اوپر اور پرماتما کے اوپر ہے جو رحم کا ساگر ہے, جیسے پرماتما سب کے اوپر رحم کرتا ہے ویسے مجھے بھی سوئم کے اوپر اور اوروں کے اوپر رحم آ رہا ہے, इस रहम भाव के वजह से दूसरों को क्षमा करना मेरे लिए सहज संभव है। दया, क्षमा और शांति, इसका अनुभव मैं करते जा रहा हूं। मैं इस अभ्यास को निरंतर करते रहूंगा क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल शांत हूं, प्रसन्न हूं। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से आपने क्षमा कैसे करना ये आज आपने हमको समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बचपन से लेके बड़ा होने तक हम हजारों लोगों को मिलते हैं। कई बार हमको बहुत दुख मिला है लोगों से, और कई बार हमारी वजह से लोगों को दुख मिला है। लेकिन जब हम अपने आप को स्वीकार करते संपूर्ण रीति से, अपने आप को हम प्यार करते, तब दूसरों के लिए क्षमा देना हमारे लिए बहुत आसान है। तो आज इतनी गहरी बातें डॉक्टर सचिन ने हमें बताई, आप इस पर विचार कीजिए। नए सीक्रेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।